ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर और श्रेष्ठ भाग्य दिया है, हर आत्मा अनुभवी है कि बाबा से हम सभी को कितनी न सूक्ष्म प्राप्तियां हुई है, और यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। आज का जो विषय है, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण। जब तीव्र पुरुषार्थी ये शब्द आता है तो मम्मा की याद हमेशा सर्वप्रथम आती है, क्योंकि मम्मा ने ही पुरुषार्थ का मतलब समझाया था। हमारी सभी दादियां मम्मा की इस विशेष बात को अवश्य सुनाती रही कि मम्मा ने पुरुषार्थ का मतलब ही बताया था कि पुरुषार्थ उसको कहा जाता है कि अगर कोई गलती हो गई तो ऐसा पुरुषार्थ करे जो दोबारा वो गलती ना हो, तब कहेंगे कि हां हमने पुरुषार्थ किया। लेकिन अब समय के हिसाब से बाबा ने आगे तीव्र शब्द जोड़ा, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पूर्व मन के संकल्प उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए जब पुरुषार्थ माना जो गलती हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हमने पुरुषार्थ किया। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही है के संकल्प में भी जब ना आए, इतनी सूक्ष्म चेकिंग हम स्वयं के ऊपर रखते हैं तो कर्म में आने का तो सवाल ही नहीं है। संकल्प से ही उसको समाप्त कर दिया तो कहेंगे कि हां तीव्र पुरुषार्थ हमने आरंभ कर दिया। लेकिन फिर भी बाबा ने कई मुरलियों में इस बात के लिए हमें प्रेरणा दी है कि बच्चे अब हर पुरुषार्थी को तीव्र पुरुषार्थी बनना है, और उसके लिए बाबा ने मुरलियों में कई शब्दों का प्रयोग किया है। जो तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है उसकी ओर इशारा करता है। एक शब्द बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं, सदा। सदा शब्द जरूर आता है। बाबा इसीलिए कभी कभी हाथ भी उठवाते हैं सभा में कि जब बाबा कहते बड़े खुशी में रहते हो, हाँ सभी ने हाथ उठाया, फिर बाबा पूछते सदा, या कहते हैं निरंतर। तो सदा और निरंतर ये तीव्र पुरुषार्थ है। ये हमारे पुरुषार्थ के अंदर जो तीव्रता लाने का आधार है, क्योंकि अगर सदा नहीं है, निरंतर जो चीज नहीं है वो पुरुषार्थ की लाइन में आ जाता है। लीला डाला चल रहा है, हो रहा है, तो उसमें जो है मार्जिन होती है कई गलतियां होने की। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा हमेशा ये शब्द का प्रयोग करते हैं सदा और निरंतर। तो सबसे पहले मुझे अपने पुरुषार्थ में ये दोनों शब्द को अंडरलाइन कर देना है कि अब जो कुछ भी करे उसमें एक तो रिजल्ट सदा की हो, खुशी है तो सदा की है, अचल अडल अवस्था है तो सदा की है ना। कभी कभी वाली बात नहीं होनी चाहिए उसमें। कभी कभी ये शब्द तीव्र पुरुषार्थी के लिए नहीं है। हाँ, कभी खुशी में है, कभी गम में है, तो ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये दोनों शब्द को हमें बहुत गहराई से अंडरलाइन करना है, सदा और निरंतर। और उसके लिए हमें ध्यान रखना है तीसरा शब्द एवर रेडी, कि कोई भी परिवर्तन की बात हो उसके लिए हमेशा तैयार। अर्थात कल पर छोड़ना, परसों पर छोड़ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये गा गा और गेंगे वाला शब्द उसकी भाषा में नहीं होगा। उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। अगर गा गा और गेंगे है शब्द तो ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तो सदा निरंतर एवर रेडी, ये इशारा देता है कि हाँ, हम तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में आए हैं। अगर कहीं पर भी ये तीन शब्द के बजाय आलस्य, अलबेलापन, या हमारे पास इतना वक्त है जो व्यर्थ पर चिंतन ये करने का समय है, तो इसका मतलब हम तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में नहीं है। ये शब्द हमारी डिक्शनरी से अब समय के हिसाब से मिट जाने चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे, आलस्य भी कितने प्रकार का होता है, अलबेलापन भी कितने प्रकार से आ जाता है, उसकी कभी बैठ करके चिंतन करके लिस्ट निकालो कि किस किस किन किन शब्दों को या भाषा का प्रयोग करते हैं हम। ये इंगित करता, इशारा देता है कि हाँ, ये आलस्य के वश या अलबेलेपन में आकर के ये बात कही गई। तो इसीलिए ये आलस्य अलबेलापन सबसे बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है कि जो हमारी गति फास्ट नहीं हो पाती है। और उसके लिए आवश्यकता है कि हर वक्त हमारे अंदर जागृति रहे, क्योंकि अगर ये अटेंशन के पहरेदार हमारे सुस्त है तो जरूर है ये गेंगे वाली भाषा अवश्य आ जाएगी, गागा वाली भाषा अवश्य आ जाएगी, और वो पुरुषार्थ में भी सहजता से आ जाता है। लेकिन जिसके अटेंशन के पहरेदार टाइट है, अलर्ट है, उसको कभी भी अंत में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा कि अरे हम कर सकते थे लेकिन हम आलस्य के वश रहे या हम जागृत नहीं रहे, नहीं तो हम कर लेते थे। तो इसीलिए जागृति बहुत आवश्यक है। इसको इंग्लिश में कहते अवेयरनेस। हर वक्त वो अवेयरनेस की आवश्यकता है कि हाँ, ये सही है नहीं है, इसको हम क्लियर करते जाए अपने अंदर से। तब हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो शायद बाबा ने इसीलिए लॉकडाउन में हर एक को समय दे दिया ना, तीव्र पुरुषार्थ करने का ही तो समय दिया कि चलो इतने समय तुम अलबेलेपन में चलते रहे, अब सब कुछ बंद है, चलो करो। तो देखा जाता है कि कई बार और इजी हो गए लॉकडाउन में, चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठकर क्लास में जाना नहीं है, अमृत वेले भी सुस्ती पने से अगर हो गया तो कोई बात नहीं, उठे तो सही ना। हम कहने का भावार्थ के बाबा ने ये जो समय दिया था उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था, और रहस्य यही था ताकि कोई भी बच्चा अंत में बाबा को उलहना न दे सके कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मेरी नौकरी ऐसी थी, इस कारण से मैं नहीं कर पाया, ये था इसीलिए नहीं कर पाया। तो ये जो 10 कारण हम दे सकते हैं, वो सारे कारणों को मिटाने के लिए बाबा ने कहेंगे ना, भगवान बहुत होशियार है, कहीं पर भी वो बच्चों के उलहने सुने वो नहीं हो सकता है, और इसीलिए उसने पूर्ण समय दिया। और कईयों ने समय का बहुत अच्छा लाभ भी लिया, बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कई लोगों ने अलबेलापन में भी निकाल दिया। तो इसीलिए उसमें अभी न समय का दोष है न बाबा का दोष है, लेकिन अगर जिम्मेवार है तो हम स्वयं हो जाते हैं। तो अंतिम समय जैसे जैसे तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है और हम सभी उस बात के साक्षी हो रहे हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को एक का पदम घुने का समय भी अवश्य प्रदान किया ताकि जितनी कमाई करना चाहे हम, भले इतने सालों में नहीं की होंगी लेकिन ये 1 साल के अंदर भी इतना पर्याप्त हमें समय दिया जो हम अपनी कमाई जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा करके अपने जीवन में उसका लाभ अनुभव करें। लेकिन उसके लिए और कौन सी बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है ताकि हमारा पुरुषार्थ साधारण गति से तीव्र गति में जाए। जैसे पहले के जमाने में बैलगाड़ी होती थी, चलती थी धीरे धीरे, और जो उस बैलगाड़ी में बैठता भी था मंजिल पर पहुंचने के बाद सारे हड्डियां दर्द करने लगती थी, इतना हिलता डुलता था जो सब दर्द करने लगे। और उसके बाद समय आया घोड़े गाड़ी का, तेज गति से चलने लगा। नहीं, वो बैलों को भी भगाते ही थे लेकिन बैलों को भगाने के बाद जो है अपनी मंजिल पर पहुंचने पर थकावट का अनुभव होता था, लेकिन जब घोड़े गाड़ी आई तो उसमें फिर व्हील भी अलग तरीके के लगाए, उसकी सवारी हुई, वो बैलगाड़ी से तीव्र गति से पहुंचाया। उसके बाद क्या कहेंगे, गाड़ियां आई, गाड़ियां भी तीव्र गति से चली, मंजिल पर बहुत कम समय में पहुंचा देती। लेकिन उसके बाद अभी समय आया फ्लाइट का, जहां भी जाना है सबसे कम समय में फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए अंतर में, तो जैसे अगर गाड़ी का भी अंतर ले और फ्लाइट का अंतर ले, तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं उसमें फ्यूल जो डालते हैं पेट्रोल जो डालते हैं, रिफाइंड डालते हैं फ्लाइट में, उड़ने के लिए रिफाइंड पेट्रोल चलता है, नॉर्मल पेट्रोल नहीं चलता है। नॉर्मल पेट्रोल से गाड़ी चलती है, लेकिन अगर उसमें केरोसिन मिक्स कर दिया जाए तो वो गाड़ी भी कैसी होती है, धक्का गाड़ी जैसा अनुभव कराती है। ठीक इसी तरह हमें भी अगर तीव्र पुरुषार्थी में जाना है तो रिफाइंड बुद्धि चाहिए। बाबा ने हम सब बच्चों को जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान अवश्य दिया है, और उस दिव्य बुद्धि का वरदान हम सभी प्रयोग भी करते हैं समय प्रति समय। परंतु अब ये दिव्य बुद्धि के वरदान में भी और रिफाइननेस हमें लानी होगी। जैसे बाबा कई बार बच्चों को कहते रहे, बच्चे जो रिफाइंड होंगे, रिफाइन बुद्धि होंगे, उसको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइननेस से जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत तीव्र गति से हम अपनी मंजिल पर सहज पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ अगर गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं, साइड सीन क्रॉस होती जाती है, ध्यान गया न गया कभी, और हम अपने मस्ती में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब फ्लाइट में जाते हैं तो साइड सीन दिखाई भी नहीं पड़ती है, दिखाई भी नहीं पड़ती है कि क्या साइड सीन है। कार वाली साइड सीन फिर भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन फ्लाइट वाली साइड सीन ही नहीं है, वो उन सारी साइड सीनों से ऊपर चले जाने वाली स्थिति होती है। तो इसीलिए जिसकी बुद्धि रिफाइन है वो कैसे तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो साइड सीन के तरफ ध्यान भी नहीं देता है, वो साइड सीन नीचे हो जाती है और वो अपनी स्थिति से ऊपर से निकल जाता है। वो तीव्र पुरुषार्थ है कि जहां साइड सीन हमारे ध्यान को आकर्षित भी न करे। बैठे हैं योग बट्टी में और आवाज आई तो तुरंत ध्यान जाता है, कौन है, फिर वापस है ना, फिर इधर से आवाज आई, इधर कौन है। अगर हमारा ध्यान बार बार टूट रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, बाबा कहे ये तो परीक्षा है ही है, योग में बैठे और परीक्षा ना आए तो हो सकता है क्या। हमारे ध्यान को तोड़ने के लिए माया 100 प्रयत्न करती है, वो भी अपने प्रयत्न में चालू है, अंत तक चालू ही रखेंगी अपने प्रयत्न के, कहीं पर भी ये बच्चों को मुझे परफेक्ट नहीं बनने देना है, ये उसने भी ठान लिया है और हमने भी ठान लिया है कि नहीं, हम परफेक्ट बन करके दिखाएं। चाहे तुम कितना भी जैसे शास्त्रों में आते हैं कि अप्सराओं को ले आओ, नृत्य करा दो और फिर भी हमारा ध्यान भंग न हो, तो माया का काम तो यही है, उसने भी ठान लिया है और अगर हमने भी ठान लिया है, लेकिन फिर भी अगर वो हो जाती है और हम विजयी नहीं हो पाते हैं तो क्या कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी है, नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थ माना ही, पुरुषार्थ माना ध्यान जाना इधर उधर स्वाभाविक है, लेकिन जहां तीव्र पुरुषार्थ आरंभ कर दिया तो वो जो निरंतर वाली स्थिति है वो टूटती नहीं है। बार बार तोड़ो और जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो, ये नहीं होता, निरंतर जो कहा गया उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, कि वो माया का कोई भी स्वरूप हमारे ध्यान को, हमारी एकाग्रता को तोड़ न सके, उसको कहेंगे कि हाँ तीव्र पुरुषार्थ में है हम। साथ ही साथ जिस तरह कोई भी गाड़ी के चार पहिए जरूर होने चाहिए, तभी वो तीव्र गति से भागती है, ठीक इसी तरह हमारी इस आध्यात्मिक जीवन रूपी गाड़ी को भी बाबा ने चार पहिए जरूर लगा दिए हैं। वो है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और ये चारों पहिए बैलेंस से चलने चाहिए। अगर एक आगे भाग रहा है, दूसरा पीछे छूट रहा है, तो वो गाड़ी कभी जा नहीं सकती है, तीव्र गति से आगे बढ़ नहीं सकती है। तो इसलिए चारों ही पहिए बैलेंस के साथ एक दूसरे का संतुलन बनाए हुए चलते रहे, तब हमारी गति तीव्र होने लगती है, पुरुषार्थ की गति सहजता से आगे बढ़ती है। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। पढ़ाई और योग का भी बैलेंस चाहिए, उसके साथ भी धारणाओं और सेवा का भी बैलेंस चाहिए। जिस तरह निरंतर याद आवश्यक है, तो निरंतर सेवा भी आवश्यक है। तो धारणा सदाकाल की होनी चाहिए और पढ़ाई हमारी कभी किसी भी तरीके से छूटनी नहीं चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं खाली, लेकिन पढ़ाई ही हमारा स्वरूप बनाती है। पढ़ाई में जो भी हर श्रीमत प्राप्त हो रही है, वही हमारे स्वरूप को निखारती है। तो इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों के बैलेंस के साथ हम जब चलते हैं, तब हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाती है। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें तो योगी करना है, ज्ञान बहुत सुन लिया, समझ लिया, अब मालूम है ज्ञान क्या चीज है। नहीं, ये राइट नहीं है, क्योंकि खाली योग से, एक पहिए से कितना आगे जाएगा इंसान? नहीं जा सकता है, इसीलिए थकावट का अनुभव करता है। और तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाधाएं यही है ना? कौन सी बाधाएं हैं? थकावट, थकावट, थोड़ा किया थक गए, रेस्ट चाहिए, पुरुषार्थ में भी रेस्ट चाहिए, बहुत हो गया। तो जहां थकावट आई, वहां गति शून्य हो गई। दूसरा, भारीपन, भारीपन भी जहां आता है, वहां हमारी गति बहुत स्लो हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोझ लेकर के चल रहा हो, तो नेचुरल है उसकी गति तीव्र नहीं होगी, हल्का होगा तो तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है, दौड़ सकता है। लेकिन अगर भारीपन है, बोझ है, तो वो बोझ वाला व्यक्ति कभी भी तीव्र गति से आगे बढ़ नहीं सकता है, स्वाभाविक नहीं है उसके लिए आगे बढ़ना। और तीसरा है बंधन। तो बोझ, बंधन और थकावट, ये तीन चीजें ऐसी रुकावट डालते हैं जो हमारी गति को बहुत स्लो कर देता है। बंधन अर्थात कहीं न कहीं हमारी बुद्धि लटकी हुई है, अटकी हुई है, फंसी हुई है। तो ये बंधन बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करती है, बार बार हमारी स्मृति में वो बात आती रहती है, तो वो हमें पीछे खींचता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। इस तरह से कोई चीज ऊपर हल्की है तो जा रही है, लेकिन अगर भारी है तो ग्रेविटी उसको पुल करती है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे की ओर खींचता है। ठीक इसी तरह बोझ होगा तो हमेशा नीचे आ जाएंगे, ऊपर उड़ना मुश्किल होगा। ऊपर की स्थिति तो सूक्ष्म स्थितियां हैं जो हमें पुरुषार्थ में तीव्रता देती है, वो सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। और इसी तरह जो कोई बंधन होगा जो बार बार हमें खींचता है, पीछे की ओर हमको खींचता है, तो वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उसकी टांगे कोई पीछे खींच रहा है। उसको रस्सियां, जैसे प्रदर्शनी के चित्र में हम दिखाते कि एक व्यक्ति को रस्सियां बांधी हुए पीछे खींच रहा है। तो जब ये रस्सियां है, बंधन है कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मन का बंधन है, चाहे अपना स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कारों का बंधन है, ये सारे बंधन मेरे खुद के हैं। जब कोई ये भी कहता है कि फलाना परिवार वाले हमारे लिए बंधन बन रहा है, तो वहां भी कारण कहीं न कहीं हम स्वयं हैं। परिवार वाले बंधन कब बनते हैं? जब वो हमारे अंदर कोई परिवर्तन देखते नहीं है, तब वो बंधन के भाई इतना समय से जा रहे हैं आप, फायदा क्या हुआ? चेंज तो कुछ दिख नहीं रही है, क्योंकि वो भी चेंज देखना चाहते हैं। और वो चेंज हमारे अंदर है नहीं, वो परिवर्तन हमारे अंदर है नहीं, तो वो कहते क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहेंगे ना फिर वो रुकावट डालेंगे हमारे लिए। लेकिन अगर हमने समझ लिया कि ये हम में क्या चेंज देखना चाहते हैं और उस चेंज को हमने करके दिखा दिया, तो क्या कहेंगे? नहीं बहुत अच्छा है, जाओ जाओ, हाँ बहुत परिवर्तन, पहले से बहुत परिवर्तन आ गया। तो वो भी जो चेंज देखना चाहते हैं, वो चेंज अगर हम में आया है तो वो बंधन कभी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर जिस चीज का चेंज हम में देखना चाहते हैं और वो चेंज आया ही नहीं है हमारे, तो वो बंधन तो अवश्य डालेंगे, कहेंगे क्या जरूरत है जब चेंज ही नहीं है आप में, तो क्यों जा रहे हो वहां, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इससे तो पहले ही अच्छे थे। तो विपरीत परिवर्तन नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा परिवर्तन बहुत शुद्ध सात्विक श्रेष्ठ होता है, उसके आगे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बंधन डालने की भी हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि बंधन डालने वाला हमेशा स्वयं में कमजोर है, तो वो सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा शक्तिशाली के आगे। लेकिन हम एक बात को पकड़ रहे हैं और बाकी सब बातों की कमजोरी हम में है, तो वो क्या कहेंगे? फिर ये भी क्यों पकड़ा, इसको भी छोड़ो ना, बाकी सब कमजोरियां हम में जैसे कि वैसी है, खाली एक पवित्रता की धारणा के लिए हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो वो क्या कहेंगे? बंधन डालेंगे ना, पवित्र क्यों रह रहे हैं। बाकी सब कमजोरियां भी जब तुम में है, उसको तो छोड़ नहीं रहे हो और इस एक बात को पकड़ करके चल रहे हो, तो ये भी छोड़ो तो बंधन पड़ेगा कि नहीं। लेकिन जो बाकी सब कमजोरियां हैं, उसको अगर मैंने मिटाया तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी, और उसके बाद वो हिम्मत नहीं करेगा पवित्रता के लिए भी बंधन डालने का। याद रखिएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि बंधन डालने वाला कभी शक्तिशाली नहीं होता है, वो कमजोरी का शिकार है, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। तो शक्तिशाली के आगे वो सर उठाएं, ये हो नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारे में भी 10 कमजोरी है और हम एक बात की शक्तिशाली बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो हमें जरूर नीचे खींचेगा, जरूर खींचेगा। इसलिए कहा, एक तो बोझ, बंधन और थकावट जहां हमारे पुरुषार्थ में आने लगती है, वो हमें कभी भी तीव्र गति प्रदान नहीं करता है। तो इन तीनों के ऊपर हमें विजयी होना बहुत आवश्यक है। ये तीनों को समाप्त करना बहुत जरूरी है, और तीनों को समाप्त करने के बाद भी बैलेंस से चलना, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है, बच्चे बैलेंस से चलने वाले को ब्लेसिंग्स भी मिलती है और वो ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करता है। इसलिए ये तीनों शब्द बाबा के साथ साथ होते हैं, बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिस, अर्थात वो आनंदमय स्थिति का अनुभव करता है, परम आनंद कहो, अतीन्द्रिय सुख वाला आनंद कहो, या ऐसी आनंद की स्थिति जो एक दिव्यता का अनुभव कराता हो, स्वयं को भी और अनेकों को भी। हमारी उस आनंद की स्थिति को देख करके सामने वाले के वाइब्रेशन भी चार्ज होने लगे, है ना, उसको भी आंतरिक सुख प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, वो तभी आएगा जब बैलेंस से हम चलते हैं। तो ये तीन बातों से मुक्त होकर के बैलेंस से चलना, क्योंकि अगर बैलेंस बिगाड़ने वाला है ना, तो भी ये तीन बातें ही है, बोझ, बंधन और थकावट, यही हमारे बैलेंस को बिगाड़ता है। इसीलिए इस तीनों के ऊपर विजयी होकर के ये चारों बातों में बैलेंस से चलना शुरू करो, तो फिर देखो मंजिल पर कितना तीव्र गति से पहुंचते हैं। और एक बात कि जैसे कहा कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए आवश्यकता है अंतर्मुखता की या साइलेंस की स्थिति की, अंतर्मुखता ही उसको कहा गया है। मुख को अंदर करके देखो, अंदर के मिरर में अपने आप को देखो, अंदर के दर्पण में अपने आप को देखो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे पुरुषार्थ की गति को स्लो कर रही है, रुकावट में ला रही है, खींच रही है। तो अंतर्मुखी होकर के ही चेकिंग करने की जरूरत है। बिना साइलेंस में जाए हम अपने आप को चेक नहीं कर सकते हैं। बाह्यता में कभी भी चेकिंग नहीं होती है, बाह्यता में बहने वाली स्थिति होती है कि बाहर के प्रभाव में बह जाना स्वाभाविक है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो और अपनी चेकिंग करो, चेकिंग करके चेंज लाओ। इसीलिए वो साइलेंस आवश्यक है कि जहां कुछ समय हम अपने आप के साथ भी बिताएं और देखें अपने अंदर कि मुझे कहां कहां किस किस बात में परिवर्तन लाने की जरूरत है, कहां तक हमने किया है वो भी चेकिंग हो जाए, आगे मुझे क्या करना है, कौन सी बातें हैं जो मुझे उस रुकावट की स्थिति में ला रही है। तो बिना चेकिंग किए चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अगर मुझे चेंज लाना है, तो कुछ समय अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखने की, अवलोकन करने की आवश्यकता है। स्वयं को देखो, है ना। अक्सर करके जैसे बाबा कहते हैं, दूर की नजर बड़ी तेज होती है, नजदीक की नजर कमजोर होती है। तो दूसरों को तो हम बहुत अच्छे कमेंट दे सकते हैं, इसको ये चेंज करना चाहिए, अभी काफी समय हो गया, बाबा का बने अभी तक ये स्वभाव नहीं चेंज किया इसने, है ना। तो दूसरे की नजर बड़ी तेज है, तो जिस तरह से हम दूसरों की चेकिंग कर लेते हैं बहुत सहजता से, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुझे अपनी चेकिंग करने की आवश्यकता है। और उसके लिए अंतर्मुखी होकर के साइलेंस की गुफा में बैठ करके अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों लेवल पर मुझे क्या क्या चेंज लाना है, ये मुझे देखने की जरूरत है, जिससे मेरी गति तीव्र हो जाए। और साथ ही साथ अंतर्मुखता के साथ साथ स्वदर्शन चक्र घुमाना जरूरी है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे दिन में 8 बार स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। क्यों कहा बाबा ने स्वदर्शन चक्र को घुमाओ, कि अपनी जो यात्रा है चारों युग में, वो चक्र बार बार घुमाओ, निराकारी स्थिति से आदि स्थिति, आदि स्थिति से मध्य की स्थिति, पूज्य स्वरूप की स्थिति, और फिर ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये जो पांचों स्वरूप में हमें बाबा ने बार बार ये चक्र घुमाने के लिए कहा है, उसका प्रयोग करते हुए ये महसूस हुआ, क्योंकि जब से बाबा ने कहा तो ये 8 बार 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 अटेंशन रखते हुए भी, जितनी बार अधिक हो और अच्छा, लेकिन कम से कम 8 बार तो जरूर होना चाहिए। तो ये घुमाते हुए ये महसूस हुआ कि यही वो स्वदर्शन चक्र है जिसके लिए कहा कि गला काटा असुरों का। माना हमारे अंदर अगर कोई भी आसुरी वृत्ति है उसको सहज समाप्त करने की विधि ये है, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि वो आसुरी वृत्ति हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है, आगे बढ़ चाहते हैं लेकिन बढ़ने नहीं दे रही है। तो उसके लिए उस आसुरी वृत्ति का गला काटना बहुत आवश्यक है, और बिना ये 5 स्वरूप को घुमाए उसको काट नहीं सकते, जितना फास्ट उसको घुमाओ। इसलिए बाबा ने जितना फास्ट उसको घुमाने के लिए कहा, जितना फास्ट इसको घुमाते जाओ आप, है ना, 1 सेकंड में एक चक्र पूरा हो जाए, या 2 मिनट के अंदर इसको पूरा कर दे, है ना, 5 सूप को आधी आधी मिनट के अंदर 1 स्वरूप में स्थित होकर के, 2 स्वरूप उसमें स्थित होकर के, 3 स्वरूप। तो देखा जाता कि जो हमारे अंदर कोई भी आसुरी गुण अगर है उसका गला न कटे ये हो नहीं सकता है, सफलता मिलना स्वाभाविक है, बहुत सहजता से सफलता मिल जाती है। और ऐसे विजयी होने का अनुभव करते हैं जिसमें मेहनत भी नहीं है, जैसे कहा जाता है ना, श्री कृष्ण खड़े होकर के बस स्वदर्शन चक्र छोड़ा और छोड़ करके उस आसुरी वृत्ति का गला काट दिया, ठीक इसी तरह ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ और देखो आपके अंदर की जो आसुरी वृत्ति है, जो हमारे संपूर्णता में रुकावट बन रही है बार बार, उसको हम सहजता से मिटा सकते हैं। या जो बाबा ने हमें कहा कि 12 बार निराकारी स्वरूप, 12 बार फरिश्ता स्वरूप, इस 2 चक्र को भी घुमाओ, ज्यादा नहीं घुमाओ तो 2 चक्र को भी 10 बार 12 बार घुमाओ उसको, 24 बार उसको घुमा करके देखो, तो भी संपूर्णता को प्राप्त करना आसान हो जाएगा और तीव्र गति हम अपनी पकड़ सकते हैं पुरुषार्थ के अंदर। तो अंतर्मुखता के साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी जरूरी है। ये स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही हम बहुत तीव्र गति अपनी पकड़ सकते हैं, जिसमें विजयी निश्चित है। स्वदर्शन चक्र चले और विजयी न हो, ऐसा हो सकता है? दूसरे कोई बाण के युद्ध करो तो उसमें तो फिर भी थकावट होगी, उसमें तो फिर भी निशाना चूक जाएगा, है ना? तो बाणों से युद्ध करने में और चक्र चलाने में विजयी कौन सा अनुभव कराएगा? चक्र अनुभव कराएगा ना। तो इसीलिए बाबा ने ये चक्र हमें घुमाने लिए कहा। साकार मुरली में भी जब बार बार ये आता है कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो उस समय आता था मन के अंदर के स्वदर्शन चक्र, माने ये चार युग को खाली दोहरा देने से क्या होगा। कभी कभी बचपन में ये जैसे विचार आता था, लेकिन जब से बाबा ने ये बात कही है कि बच्चे ये पांच स्वरूप को तुम आठ बार घुमा करके देखो और उसका प्रयोग किया, प्रैक्टिकल हमने अपनी लाइफ में प्रयोग किया, तो ऐसा लगा कि सचमुच कई चीजों का गला कटता गया और विजयी होने का अनुभव होता गया और बहुत सहजता से पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। आप खुद भी इसका अनुभव करके देखो, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी घुमाने वाला ही 108 की माला में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। यह अनुभव, संपूर्ण विजयी होने का अनुभव। इसलिए जब भी बैठो ये चक्र चालू करो, योग में बैठते ही चक्र के साथ ही योग आरंभ करो, आप खुद महसूस करेंगे कि इतना सुंदर अनुभव होगा। अच्छा, जिस दिन स्मृति विस्मृत तो हो गई और दिन के अंत में चार चेक किया कि आज सारा दिन समय नहीं मिला, एक बार भी घुमाया नहीं, रात्रि सोने से पहले घुमा दो उसको, आठ बार घुमा दो, इकट्ठा घुमाओ, और जितना तीव्र गति से घुमाएंगे ना, आप खुद महसूस करना, क्योंकि ये भी हमने अनुभव करके देखा है कि इसको अनुभव करके देखो आप, इकट्ठे आठ बार घुमाना चालू करो आप, इतना तीव्र गति से ये घूमना शुरू होगा और सचमुच में ऐसा लगेगा एकदम जैसे सारे दिन की थकावट आपकी समाप्त हो जाती है और आपका पुरुषार्थ जो है बहुत सहजता से तीव्र गति को आरंभ कर देता है। तो इसीलिए बाबा ने कोई भी बात कही है उसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है, करके देखो, ये हमें विजयी होने का अनुभव कराएगा। बाकी जिसने स्वदर्शन चक्र को नहीं घुमाया, ये पांच स्वरूप का अभ्यास नहीं किया, वो जरूर है कि तीर कमानधारी बन जाता है, अर्थात त्रेता युग वाला बन जाता है ना। पुरुषार्थ करते 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 धीरे 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 चलो मंजिल पर पहुंच जाएगा, ये सोच करके कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो वो त्रेता युग वाला बन जाता है। लेकिन अगर सचमुच आप समझते हैं कि 108 की माला में मुझे आना ही है, तो उसके लिए ये पुरुषार्थ करके देखो आप, जितना ज्यादा देर ये स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे और जितना तीव्र गति से उसको घुमाएंगे, आप देखेंगे कि अपने अंदर एक ऐसा हल्कापन डेवलप होगा कि सचमुच ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कई चीजों से फ्री हो गई हूँ, कई प्रकार की कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। ये अनुभव करके दे, ये भट्ठी में आए हैं तो इसीलिए इस भट्ठी में आपको मौका है और ये स्वदर्शन चक्र को घुमाते जाओ और देखो यहाँ से जाने के पहले आप कैसा फील करेंगे। सचमुच में ऐसा लगेगा कि जैसे विजयी आत्मा होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
बिना